نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دم ذریعہ علاج آج ہم اس کا آخری ٹاپک کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی زیادہ عاجزی اور شکرانے کے جذبات کے ساتھ اور واقعی یہ کتاب جتنی فائدہ مند ہے پڑھنے سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا ایسے ہی ہے نا بہت سارے لوگوں نے یہی کمنٹ دیے کہ جب یہ کتاب دیکھی تھی تو یہ کام سا بکلٹ لگا تھا لیکن پڑھنے کے بعد اب یہ اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ اب ہر روز اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہماری ضرورت بن گیا ہے ساری باتوں کا خلاصہ کر دوں ہمارے کچھ ساتھی آج نئے بھی ہیں اس کتاب میں سب سے پہلے تو ہم نے جادو کا علاج دیکھا وجہ وجوہات اور یہ کتاب علاج سے زیادہ کچھ تھی وجوہات اور الحمدللہ ہم نے اس کو بہت ہی سکون سے پڑھا ہے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں تھی اور اللہ کرے کہ یہ کتاب اب ہماری زندگیوں میں اس طرح اثر رکھے کہ ہماری ساری قلبی روحانی جسمانی اور ہر طرح کی بیماریاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں اس کے ساتھ تو جادو کا ٹاپک بہت طویل تھا اس کا الحمدللہ اس کو پڑھا پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک تھا نظر لگنا نظر بعد جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی الحمدللہ اس کے مختلف چیزوں کو دیکھا تیسرا ٹاپک تھا جنوں کا چمٹنا یہ بھی عام ہے آسیب ہو گیا اس نے اس کو پکڑا اور یہ ہوا تو جنوں کے علاج کی طریقے کچھ دیکھے پھر چوتھا تھا نفسیاتی بیماریاں سائیکلوجیکل ڈیزیزز جس کے نام پہ آج سائیکاٹرسٹوں کو ہم نے کافی زیادہ مالدار کیا ہوا ہے اور لوگ جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا خوبصورت علاج ہیں اور ہم نے اس میں تقریباً نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کے 28 ڈفرینٹ ذریعے دیکھے تھے پھر اس کے بعد پانچواں تھا اس کا اندرونی اور بیرونی زخم زخم سب کو لگتے ہیں اور بچوں والے گھر میں بچوں کو بڑے لگتے ہیں ہم نے اس کا علاج دیکھا تھا قرآن سنت سے پھر مصیبت کا علاج دیکھا غم اور پریشانی کا علاج تکلیفوں کا علاج مریض خود اپنا علاج کرے پھر مریض کی عادت کے وقت کیا کیا جائے اور پھر نیند میں بے چینی اور گھبراہٹ کہ نیند نہیں آتی تو کیا علاج ہو اور پھر اس کے بعد بخار کا علاج اور بچھو اور سانپ کے ڈسنے کا علاج پھر غصے کا علاج کو رہ گئی یہ بیماری پیچھے حسد کا علاج بھی ہم نے اس میں پڑھا تھا پھر کلونجی کے ذریعے علاج شہد کے ذریعے علاج اور زمزم کے پانی سے علاج اور آج ہم اس کا آخری ٹاپک شروع کر رہے ہیں دل کی بیماریوں کا علاج آئیے پڑھتے ہیں اس کتاب کو کھول لیجئے پیج نمبر 36 ہے دل تین طرح کے ہیں پہلا ہے قلب سلیم دوسرا ہے مردہ دل اور تیسرا ہے بیمار دل اگر آپ اس کو نمبرز دینا چاہیں نا تو پہلے نمبر پہ دیں گے قلب سلیم دوسرے نمبر پہ دیں گے بیمار دل پھر دیں گے مردہ دل کیونکہ دل سلامت ہو تو بالکل صحت مند ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ مر ہی جاتا ہے یہ تین سٹیپ ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کو قلب سلیم کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ شورا آیت 88 سے 89 میں فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی امیجن کریں اس وقت آپ کو اپنے بچوں سے جتنی امیدیں ہیں اور بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری امید تھی لیکن تم نے یہ نہیں کیا تم نے تو میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا اسی طرح مال سے بھی ہمیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں جب مشکل آئے گی مال کام آئے گا لیکن ایسی بیماری آ گئی مال ہاتھ میں پڑا ہوا ہے علاج ہی کوئی نہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا علاج سارا مال دے کر بھی نہیں ہوگا تو پھر بندہ مال کو کہتا ہے تحفہ ہے تجھ پہ میں نے ساری زندگی تجھے اپنا آپ دیا آج تو میری زندگی میں ایک دن بھی بڑھانے کا ذریعہ نہ بنا تو قلب سلیم کیا ہے آدمی ایسا دل لے کر قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوگا تو وہی نجات حاصل کرے گا قلب سلیم یہ ہے کہ ہر ایسی خواہش سے دور رہے ہائی لائٹ کیجئے گا اس جملے کو قلب سلیم کیا ہے کہ ہر ایسی خواہش سے دور رہے جو احکام الہیہ کی مخالف ہو یعنی اللہ کے حکموں کی مخالف نہیں بڑی بات ہے اس میں صحت مند دل کس کا ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے سیدھی سی بات ہے اور خواہشیں کون سی ہوتی ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہوتی ہیں دیکھیے ایک ہے ہوا خواہش اور ایک ہے ہدن ہدایت ہدایت کے راستے کی رکاوٹ ہدن ہوا تو قلب سلیم ایسی خواہشوں سے دور ہے جو اللہ کے حکموں کی مخالف ہوتی ہیں اور ہر قسم کے شبہ سے دور رہے دوسری بات یعنی آپ 1 2 3 لکھیں اس جملے کے اندر कल्बे सलीम की पहली तारीफ ख्वाहिशों से दूर। कौन सी ख्वाहिशें? जो अल्लाह के हुक्मों से बंदे को दूर ले जाएं, जिस ख्वाहिश को पूरा करके अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाए। दूसरी उसकी अलामत क्या है? हर किस्म के शुबे से दूर रहे। याद रखिए, शक शुबा बहुत बड़ा मरज है। सूरत फातिहा के बाद सूरह बकरा के अंदर पहला पैगाम यही है कि ज़ालिकल किताब ला रईब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदा लिल मुत्तकीन, हिदायत तो तकवा वालों को मिलेगी। पता क्या चला कि जब दिल में शक आ जाता है ना, तो इंसान किताब से हिदायत नहीं ले सकता। किताब से हिदायत लेने के लिए दिल को हर शक शुबे से पाक रखना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस डॉक्टर की दवा पे शक होता है ना, उससे सेहत कुछ नहीं मिलती। जिस खाने पे आपको शक पड़ जाए ना कि ये बीमार कर देगा, फिर आप खा के बीमार हो ही जाते हैं। तो दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे दिलों को शक से पाक कर दे, शुभों से पाक कर दे। जो आपकी खबर के मुखालिफ हो, यानी जो खबर आपको मिल चुकी उसमें आपको शक आ गया, लिहाजा वो बंदगी में गैर अल्लाह की शिरकत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी का फैसला तस्लीम करने से दूर रहे। दोहराऊं इन सारी चीजों को। कल्बे सलीम कौन सा? ऐसी ख्वाहिशात का मुखालिफ जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ ले जाए। नंबर दो, शुबे से पाक। वो शुबा किस चीज में? जो खबर आ चुकी, खबर के हमारे पास। अम्मा यतसालून अनिन नबइल अजीम, ये कुरान, कयामत, नबी सल्लम का वजूद, ये नबा है। और मुसलमान होने के नाते हम सबको पता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी खबर क्या है कि फमन जुखजिहाने नारी वउदखिलल जन्नत फकद फाज, के इस दुनिया से बच बचा के गुजरते हुए जो जहन्नुम से बचाकर जन्नत में भेज दिया गया, बस वो कामयाब हो गया। तो इस खबर से शक डाल देता है शैतान। नहीं नहीं कोई नहीं, क़यामत आनी, ऐसी कहते हैं ये मौलवियों की बातें हैं। तो कल्बे सलीम में शक नहीं है। तीसरी चीज, बंदगी में गैर अल्लाह की शिरकत से पाक। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन को मानने वाला। और चौथी सिफत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी का फैसला तस्लीम नहीं करूंगा। रिजेक्ट कर रहा है वो, कह रहा है सॉरी तुम जो मर्जी कह दो, लेकिन मैं अल्लाह के नबी की हदीस या आपकी दलील के बगैर आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कितना प्यारा होता है कल्बे सलीम। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे दिल को ऐसा बना दे। मुख्तसरन इसकी सिफात दर्जा जैल हैं। आप इसमें, आप चार वो लिखी, आप इसमें आगे भी जमा कर सकते हैं ये चीजें। हर लिहाज से गैर अल्लाह की शराकत से महफूज हो, बल्कि इसकी बंदगी खालिस अल्लाह के लिए हो। छह हो गए हैं जुमले। सातवां, इरादा, मोहब्बत, तवक्कुल, झुकाव, पोशीदा इबादत, खौफ, उम्मीद और हर अमल खालिस अल्लाह के लिए हो। पसीने आ जाते हैं इस अमल को करते करते। अमल करने बहुत आसान है, लेकिन अमल को रियाकारी से बचाना बहुत मुश्किल होता है, इखलास लाना बहुत मुश्किल होता है। तो कल्बे सलीम में हर चीज बस एंड पे एक नुक्ते पे जाती है, और वो है अल्लाह। फिर अगली इसकी सिफत, अगर मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे। खुद से पूछे हजरा, इन्नी उहिब्बु की फिल्ला, कितनी दफा लोगों को कहा है, क्या वाकई मेरी मोहब्बत अल्लाह के लिए थी? तो फिर छोटी सी बात पे दिल की टूट गया, फिर छोटी सी बात पे नाराज होकर उसको छोड़ क्यों दिया, फिर उसकी छोटी सी खराबी देखी तो उससे बिल्कुल बेनियाज क्यों हो गए? नहीं, जब अल्लाह बीच में आ जाता है, फिर बंदे की अपनी बातें पीछे रह जाती हैं। फिर अगली सिफत, बुगज रखे तो अल्लाह के लिए रखे। ये क्या होता है? सगी औलाद है, काम ऐसा कर रही है या करवा रही है जो अल्लाह को नहीं पसंद, तो कह दो इन्ना बुरा मिनकुम। सूरह मुमतहना में आता है, हजरत इब्राहिम ने अपनी पूरी बिरादरी को कह दिया था, कौम को, तुम जो करते हो करो, मैं तुमसे बेनियाज हूं, क्योंकि तुम वो करते हो जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। तो क्या मेरा आपका बुगस अपने प्यारों के साथ अल्लाह के लिए है? बेटा तुम मेरी जान हो, लेकिन अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं। तुमने फजर नहीं पढ़ी, मैं तुम्हें नाश्ता देने से बेनियाज। तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, मैं तुम्हारे हर दुख सुख से बेनियाज। करके तो देखें, ये है ईमान की इंतहा। एक और हदीस है, कहीं आगे पढ़ी होगी या सुनी होगी या सुनेंगे, कि जिसने चार चीजें अपने अंदर रखी, फकद इस्तकमल ईमान, उसका ईमान पूरा हो गया। और उसमें यही दो चीजें हैं, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह, पूरे दीन का एक खुलासा है। अकीदे के अंदर ये एक रुकन है कि आपकी मेरी मोहब्बतें और हमारी नफरतें या बुग्ज़ अल्लाह के लिए हो। मैं कहती हूँ, मैं वो बुक पढ़ा दूँ ना अगर आपको, तो पसीने ना छूट जाए तो जो मर्जी कर लो। किसी ने एक दफ़ा कहा इस बुक को पढ़ा दे, मैंने कहा आप ज़रा इसको अंदर से खोल के तो पढ़ें, तो जब उन्होंने उनके टाइटल देखे तो कहेंगे नहीं अभी नहीं ये पढ़ानी। आज हम पूरी सोसाइटी अपना ख़ानदान देखें, माशरा देखें, रिश्तेदारियों के मुकाम मेयार दोस्तियाँ ले आने इस असूल से टूटे में, क्या करें फिर रिश्तेदारी रखनी पड़ती है, क्या करें बचपन का साथ है, क्या करूं फिर ससुराल का मामला है ना, फिर क्या करूं बेटी का ससुराल है, इतने खुदाए हमारे और सबको खुश करते करते एक अल्लाह को कहते हैं चलो कोई नहीं अल्लाह तो अपना ही है, वो मान जाता होता है, मान लेगा। याद रखिए ये अकीदे, और यही चीज जरूरत लाती है, अल्लाह की मदद आती ही इस रास्ते से जब अल्लाह ये देख लेता है ये मेरा है फरिश्तो, ये मेरा बंदा है, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे हुक्म के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको कुछ नहीं अच्छा लगता। बिलाल क्या थे, काले हबशी, लेकिन सीने से लगाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, काबा की छत पे खड़े होकर अजान देते थे, क्यों अलहुब्बु फिल्ला। और अबू लहब सगा चचा, एक तरफ से सगा था एक से नहीं था, सगे चचाओं में कितने थे अल्लाह के नबी जी, कौन अबू तालिब, सिर्फ अबू तालिब माँ और बाप दोनों से सगे थे, बाकी सब कोई माँ से थे कोई नीचार से, अब्दुल मुत्तलिब की 5-6 बीवियां थी उनसे ये औलादें थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप और मैं अपनी मोहब्बतों का किबला देखें, ये दिल टूटता है इससे। आप कहते हैं मेरा दिल टूट गया, फला मेरा दिल तोड़ गया, फिल्मों में तो बड़ा ही टूटता है और नावलों और अफसानों में भी टूटता है, दिल तोड़े अल्लाह के लिए, मैं क्या करूं तो मेरी बहन हो पर सॉरी मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकती, मैं बहुत खुश हूं लेकिन मैं इस खुशी में रब को नाराज नहीं कर सकती। जिस दिन बंदे को ये जुर्रत मिल जाती है ना, यकीन करें अल्लाह की मदद भी उसके बाद ही आती है और लोग आपसे खुश भी तभी होते हैं। ये इतना बड़ा राज है, अगर लोगों को पता लग जाए ना तो वाकई भी शिर्क करते हुए सिर्फ वो दुनिया के फायदे लेने के लिए इसमें आ जाए, तभी अल्लाह ने इसको छुपा के रखा है। हम सारी जिंदगी लोगों को खुश करना चाहते हैं फिर आखिरी उम्र में रोते हैं कोई नहीं खुश हुआ, बीमारियां लग गई। लोग उस दिन खुश होंगे जिस दिन आप उनको अल्लाह के लिए खुश और अल्लाह के लिए नाराज। बाहर कड़वी होती है, दवा खाएं कड़वी, ऑपरेशन करवाएं चोट पड़ती है, लेकिन उसका फायदा होगा। आप देखें कुछ लोग हैं हमारे अपने घरों में ऐसे होंगे, हर एक के खानदान में होंगे, लोग कभी गिला नहीं करते वो शादियों में क्यों नहीं आए, भाई इनको क्या कहें ये तो अपने सगे बहन भाइयों के घर नहीं आते, जब कुछ हो कोई गिला ही नहीं करता, उम्मीद ही नहीं, लोग आपसे उम्मीदें ही नहीं लगाते गलत चीज की, हम जैसे लोगों से उम्मीदें लगाई होती हैं फिर हम आधी पूरी करते हैं आधी नहीं करते, तो जो की भी होती है ना वो भी हमें मारी पड़ती है, एक की पूरी कराते हैं दूसरी की ना करते हैं, कहते हैं अच्छा जी उधर तो चली गई थी मेरे पास नहीं आई, बस ये दो कश्तियों का सवार तो कभी ना पहुंचा ना कहीं पहुंचेगा। तो कल्बे सलीम पूरा पूरे का पूरा दिल अल्लाह मैं आपको देके आई हूँ आपके लिए लाई हूँ। देखिए आपने कभी किसी को गिफ्ट देना हो ना तो आप उसकी कितनी हिफाजत करते हैं, बॉक्स ना खराब हो, उसकी लुक अच्छी रहे, पैकिंग करके रखी और बच्चा जरा उसका रिबन खींच दे या ऊपर से कागज फाड़ दे जान निकल जाएगी। संभालते केक देना हो किसी को कहते खबरदार इसको हाथ लगाए ये मैंने किसी को देना है, टूटी हुई चीज तो कोई नहीं देते, और कोई आपको गिफ्ट दे खोले तो अंदर से टूटे हुए मग निकले, डुंडिया कोई नहीं है उसके अंदर कट पड़े हुए लगे साफ के पुराने हैं, तो एक लम्हे के लिए तो आप सोचेंगे कि ये मुझे ही दिया है या किसी और को देना था। तो जब अल्लाह को हम अपना दिल देते हैं कभी आपने मैंने सोचा उस वक्त क्या होगा, अल्लाह ना करे खराब चीज किसी ने दी हो ना तो बंदा उसको किसी के सामने खोलता भी नहीं, या देनी हो या दी हो तो कहते छोड़ो किसी को पता ना ही चले, किसी की बात बहुत पहले की सुनी, उन्होंने कहा शादियों में गिफ्ट देने जो मर्जी हो दे हो, नाम ना लिखो बस हाथ में देख लेंगे आए थे कुछ था, खोलेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसका दिखावे को देना तो है, अब क्या करें फिर हर शादी पे देना पड़ता है किस किस को दें, ऐसे भी होता है। आप और मैं अपने दिल से पूछें कि जब अल्लाह के पास मेरा अमल मेरे दिल मेरे काम जाते हैं तो क्या वो टूटे फूटे निकलते हैं या खूबसूरती से निकलते हैं। सारी जिंदगी दुनिया के अंदर हम परफेक्शन का शिकार होने की ख्वाहिशों में जीते हैं, इबादतें टूटी हुई, नमाजें टूटी हुई, दीन के काम टूटे फूटे, आधे दिल की कोशिशें, लिख लें इसको बात हाफ हार्टेडली कभी कल्बे सलीम नहीं बनेंगे, होल हार्टेड, आप बल्कि इसका इंग्लिश तर्जुमा ही ये लिखिए, कल्बे सलीम का इंग्लिश होल हार्टेडली, पूरे दिल। हम तो 10-10 दिल बना के लोगों को दिखाते हैं, कभी चमकते हुए कभी उछलते हुए कभी लटकते हुए दिल दिल दिल, तो अल्लाह को वो दिल देना है जो हर आलाइश से पाक होगा और अल्लाह आपका मेरा ऐसा दिल बना दे। फिर उसके बाद अगर दे तो अल्लाह के लिए दे, हम क्यों देते हैं वो भी तो दे गए थे ना, वो 50 दे गए थे उस पर एक लगा के क्या अमन कर दो, वो 100 दे गए थे, 101 कर लो। अब पता नहीं ये रिवाज खत्म हुआ कि नहीं, मैंने सुना भी है, मेरे जहन में थोड़ी थोड़ी शिबाहत है कि पहले दौर में लोग शादियों में 101 देते थे। भाई ये क्या कहते, वो 100 दे गए थे ना 10 साल पहले मेरे बेटे की शादी में, तो मैंने कहा एक बढ़ा दो, तो वो 10 साल में 100 रुपए की डिवेल्यूएशन कितनी हो गई ये किसी को नहीं पता। तब 100 रुपए का हो सकता है आधा तोला सोना आता हो, आज एक का चाय का कप नहीं आता। तो ये होता है, लोग गिनते हैं कब दिया क्या दिया। आपने किसके लिए देना है? अल्लाह के लिए, मेरा ओनली फॉर माई अलॉट। फिर दे के भूल जाए, याद ना रखे कि अच्छा वो किधर, वो कापी किधर गई जो बच्चे की शादी पे बनी थी। कई लोग कहते हैं वो शादी में फुलां को बुलाना है, अरे छोड़ो क्या करना, कहते हैं इतनी शादियों में दिया हुआ नहीं है, 500 रुपये पर हेड दे के कम से कम 4-5 हज़ार तो दे के ही जाएंगे ना, अब इनको बुला लो, पिछले खाते तो पूरे कर दें। और हमारा एक बाबा था, उसे मैंने बहुत कुछ वैसे सीखा है, वो बड़ा बातें सुनाता था अपने गाँव की ना, तो वो कहता है बीबी जी पिंड च लड़ाइयाँ पै जाती, तेरे कर मैं वरत्या सी, तू की है वरत के गया। वो इस तरह की टोन थी उसकी बाबे की, बड़ा सच्चा बंदा था, अल्लाह उसकी बख्शिश करे। लेकिन सच बात है कि हम अल्लाह के लिए नहीं देते, अल्लाह के लिए दिए भूल जाए, उम्मीद ही ना रखे। हम कहते हैं उसको दो जो आपको भी दे, उधर आया था उसको, और छोटा छोटा खाना पीना स्माइल, आप नेबर को भेज दें, अल्लाह के लिए भेजें, आप भेज दें उस बंदे को, रात जाते को खिला दें जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, तो ये इंशाल्लाह दिल को सलामत करेगा। फिर इसी तरह अगर रोके तो अल्लाह ताला के लिए रोके, नहीं देना इसको, क्यों नहीं देना, क्योंकि इसको दूंगी तो ये इसका मिसयूज करेगा, ये इसको इस्तेमाल करके गुनाह करेगा, नहीं देना मैंने इस वक्त, नहीं दूंगी क्योंकि इस वक्त देना रस्म है, इस वक्त नहीं दूंगी क्योंकि मैंने ना ये रस्म तोड़ी, तो सारे ही गम के मारे देंगे। आप देखिए आज हमारी शादियां लोगों के लिए बोझ बन जाती हैं, क्या करें फिर, देना तो है ना, तो भी ना दीजिए आज देना, कोई घर वाले से संभाले भी नहीं जाते। आप देखिए पार्टी हॉल में अगर शादी हो रही है, मैरिज हॉल है, और वो वक्त जिस वक्त औरतों की घर वालों की अपनी मत ही मारी होती है, लाला के उसको लिफाफे पकड़ा रहे होते हैं। मैंने कई शादियों में सुना है, हमारे अभी रिसेंटली भी किसी का मुझे पता चला कि माँ लड़के की थी या लड़की की थी मेरा ख्याल है, तो वो जो दे रहा था पैसे उसमें बैग में डालती जा रही थी, बैग ही चोरी हो गया। लोगों की नजर होती है, जो चीज जोर से पकड़ी हो लोग कहते इसमें कुछ है, तो वो कहती वो उसके घर जाके देखा बैग वही था, अंदर से पूरे के पूरे वो थैले लिफाफे। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि बताओ तुमने मुझे क्या दिया था, खोले ही नहीं थे लिफाफे, और अमूमन अब लोग पैसे ही देते हैं, क्या मिला। अब घर में एक मत हमारी, और आप हर शादी करते इतने गिफ्टों के डब्बे उठा उठा के घर जा रहे, भाई आप कल जाके घर दे दीजिएगा, कोई गिफ्ट को उसने आज रात को पहन के सोने आपका जोड़ा। लेकिन बस क्या करें, अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाते हुए, फिर उल्टी सीधी रस्म, घर किसी का देखने जा रहे हैं, अब गिफ्ट तो देना है ना, अब खाली हाथ क्या जाए, भाई आप खुद जा रहे हैं, ये थोड़ा आप 6 बच्चे ले जाए साथ, खाली हाथ क्यों जा रहे हैं, किसी को भी साथ ले जाए हैं। तो याद रखिए आप घर से कोई चीज उठा के ले जाए अपनी, के ये खाली हाथ नहीं आना था, तो मैंने कहा ये घी का डब्बा उठा के ले आई हूँ। लेकिन हम आर्टिफिशियल तल्लुक रखते हैं, और फिर इसी के ऊपर मोहब्बतों को परखते हैं कि फलाने मुझे बड़ी खुशी से दिया, इधर क्या लिखा हुआ है, दे तो अल्लाह के लिए रोके तो अल्लाह के लिए। इसकी परेशानी, ये जुमला हाईलाइट कीजिएगा, ये आपको आपका अपना आप दिखाएगा इंशाल्लाह। इसकी परेशानी, इसकी मोहब्बत, इसका इरादा, इसका जिस्म, इसका हर काम, इसका सोना और इसका जागना अल्लाह ताला के लिए हो। वो कहते ना कि डूब के पाजा सुराग़े जिंदगी, इस एक जुमले की ताब कौन कौन ला पा रहा है। ये अल्लाह ऐसे नहीं अपना बनता जो हमने बचपन से बनाया हुआ है, पूछे खुद से। और ये वही बात है कि कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत अल अनाम की आखिरी आयतें हैं, जीना मरना देना लेना सोना सब कुछ इसमें आता है। आप अपने आप को इन जुमलों से पूछे, क्या मेरी परेशानियां वाकई अल्लाह के लिए हैं? मुझे हर वक्त क्या गम सताता है? अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का गम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है खानदान का गम नहीं है, कोई माल का मसला नहीं है, गम ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का दीन फैल जाए, अल्लाह के बंदे, मसले मसाइल परेशानियां हम गम सब अल्लाह के दीन के साथ है, ये अच्छा तो सब अच्छा, ये अच्छा नहीं तो सब अच्छा नहीं। और यकीन करें एक ऐसा वक्त भी आ जाता है अल्लाह के रस्तों में कि बंदे को कुछ और याद ही नहीं रहता। खुशी तब होती है जब कोई अल्लाह का काम अच्छा हो जाए, और दिल दुखी उस वक्त होता है जब वो ना हो सके जो सोचा हो। फिर मोहब्बत, इरादे, मेरे इरादे क्या है, व्हाट आर माय प्लान्स, अगले साल का, अगले महीने का, अगले हफ्ते का, कल का, आज का, अपने प्लान्स में खुद को देखें कि कल्बे सलीम है कि नहीं। देखिए अगर आप गौर करें ना, ये आज ये इलाज है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि दिल की बीमारियां ना, आज बीमारी दिल को जो अक्सर हमारे लगी हुई है ना, हमारे दिल सलामत नहीं है, ये सब कुछ लग नहीं रहा। जब दिल में मोहब्बत दुनिया की, जब दिल में तलब दुनिया की, हिरस दुनिया की, गम दुनिया का, तफक्कुरात दुनिया के, इरादे दुनिया के, इतने से बच्चे को हम पूछते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। हम छोटे थे हमसे पूछते थे सब, अब भी पूछते होंगे। और हर दूसरा बच्चा कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों बनोगे? दुख इंसानियत की खिदमत करने के लिए। और वो दुख इंसानियत बाद में सिर्फ अपने बीवी बच्चे रह जाते हैं, क्या इनका भी तो पेट पाल लूं। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे से कहा बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे? बेटा तुम दीन के मुजाहिद बनोगे, तुम दीन को फैलाओगे, तुम इमाम काबा बनोगे। ये प्लान है हमारे, यकीन करें, ये मेरा आपका असल है। केले में बैठ के इन जुमलों से अपने आप को जाके चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि हमारे दिल बीमार तो नहीं है और सलामत है कि नहीं। इसका जिस्म, इसका काम, सोना, अब इसके एक एक की आगे लिस्टें हैं। इस जिस्म की तकाजे पूरे कर रहे हो, घंटों मशीनों में बिठा रहे हो, इसको सजा रहे हो, संवार रहे हो, कहीं पेडीक्योर और कहीं मैनीक्योर और कहीं फेशियल और कहीं वैक्सिंग और कहीं ब्लीच और कहीं पॉलिशिंग और कहीं स्ट्रेट, पता नहीं क्या क्या चीजें। या कहते हो अब जो अल्लाह ने बना दिया अब क्या करें, टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, तवज्जो ही कोई नहीं है। जो है ठीक है, जैसा भी है बाद में जाके आगे कर लेंगे जो करना होगा। अपने जिस्म को हम पूछें, कुछ लोगों को सिर्फ उनके जिस्म के तकाजे अल्लाह के रास्तों से रोक लेते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि हर काम, सोना, जागना, एक ही सदमा है, एक ही सोच लेके सोना है और उसी पे जागना है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूत हुआ हया। दुआएं बड़ी आसान है पढ़नी, लेकिन गौर व फिक्र बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला के मुतल्लिक गुफ्तगू इसे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। यानी जाने का इरादा था, अल्लाह की बातें शुरू हो गई तो बैठ गई। और वल्लाही बदगुमानी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, गुफ्तगू हो रही, खा रहे, पी रहे, केक चल रहा है, चाय पी रहे, बट जरा के चले अब आप बैठ के जरा थोड़ी सी बातें कर ले, जरा थोड़ी सी दुआ कर ले, ओ बच्चों का टाइम हो गया, आई हैव टू गो, मैं रास्ते में सुन लूंगी, मैं बाद में सुन लूंगी। ऐसे कुछ लोग अल्लाह के जिक्र से भागते हैं, सूरह मुदस्सर की मुझे आखिरी आयतें याद आ जाती हैं, याद है किसी को? हुमुरुम मुस्तनफिरा, शेर को देख के गधा भाग जाता है, डरपोक होता है ना। अल्लाह ने कुरान में उन मक्का वालों का हाल लिखा है, ये तो कुरान से यूं भिदकते हैं जैसे गधा भाग जाता है शेर को देख के, इनको कुरान का जिक्र अच्छा नहीं लगता। वो मक्का वाले थे, आज हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। तो अपने आप से पूछिए क्या बातें अच्छी, कब मजा आ रहा होता है दोस्त के साथ, कपड़े क्या चल रहे हैं, फैशन क्या है, बुटीक का मॉडल क्या चल रहा है, क्या खड़ा है, सब खड़े होते हैं, हम पहन के चलते हैं, लेकिन कहते हैं आजकल क्या चल रहा है। कपड़ों, जूतों, सबकी चीजों की मोहब्बत, बातें करना अच्छा लगता है ये अल्लाह के लिए। इसमें वो एक वाक्य भी मुझे याद आ रहा है हजरत इब्राहिम के बारे में, कि किसी ने रश किया कि अल्लाह ताला आपने इब्राहिम को खलीलुल्लाह क्यों बनाया, आप इतना उनका जिक्र क्यों करते हैं? कहा अच्छा जमाने जाओ, चले जाओ, वो देखो क्या है। हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे थे, एक फरिश्ते को अल्लाह ताला ने वहां इंसानी रूप में भेजा, उसने जाकर वहां अल्लाह की हम्द शुरू कर दी, अल्लाह का जिक्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना अच्छा लगा, उसके पास गए, कहने लगे भाई ये क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर सुना दो, फरमाइशी प्रोग्राम। कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए क्यों सुनाऊं, मुझे क्या दोगे? कहा अपनी आधी बकरियां दे दूंगा। कहा अच्छा ठीक है। उसने एक दफा वो हमदिया तराना जो भी थी बातें सुना दी। कहा दिल नहीं भरा, एक बार फिर। कहा अब क्या दोगे? कहा ये बाकी भी बकरियां दे दूंगा, कुल मिरास कुल मता दे रहे इब्राहिम, अल्लाह का सिर्फ जिक्र सुनने को। हम सोचते सबसे ज्यादा इसके लिए कि खर्चा कितना है, और जब दे दी तो दिल फिर नहीं भरा। कहा भाई एक बार फिर सुनाते हो। कहा अब तुम्हारे पास है ही क्या, अब क्या दोगे? कहा मैं तुम्हारी इन बकरियों का चरवाहा बन जाऊंगा। यानी मलकियत देकर गुलामी ले रहे हैं, ये अल्लाह की बात है। क्यों नबत्तखदल्लाह इब्राहिम खलीला, अल्लाह का इंतखाब गलत नहीं है, अल्लाह ताला को कभी भूल नहीं लगती, याद रखिए। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को कोई नंबर इधर उधर के नहीं लगवा सकता, कोई मेरिट के ऊपर नंबर जो आते हैं अल्लाह वही देता है, जो डिजर्व करता है अल्लाह उसको ही देता है। और आप और मैं डिजर्व कर सकते हैं क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, कोई पता नहीं कल हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए हमेशा अपने रब को अपनी गुफ्तगू का महवर बनाएं, दूसरों को भी देखें किसकी मौजूदगी में मैं अल्लाह की बातें ज्यादा करती हूँ, और कौन आ जाए तो उसे फजर भी चली जाती है, सारी रात बातें करके मुर्दों की तरह सोए फजर चली गई। ऐसी दोस्तियों से इज्तनाब करें, वरना याद रखिए कि दिल टूट जाएगा। फिर इसके बाद इसकी सोच का माहवर अल्लाह की मर्जी और इसकी मोहब्बत के मुताबिक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा भी दिल ऐसा कर दे। मांगे जरा अपने लिए कि अल्लाह हमारा दिल बदल दे, और अगर ये बन जाए ना तो दुनिया जन्नत है। इमाम इब्ने तैमिया का दिल ऐसा ही था, वो कहते थे इन्ना जन्नती माई, मेरी जन्नत मेरे साथ है। उनको लोगों ने जेल में डाल दिया था आखिरी उम्र के हिस्से में। दुश्मन सोचता है इनको तकलीफ हो रही है, ये जेल में बैठे हुए हैं, इनकी जिंदगी कैद कर दी हमने। तो कहते थे मैंने जितना जेल में इंजॉय किया इतना तो मैंने कभी बाहर भी नहीं था किया। रह गई जन्नत तो वो तो मेरे साथ होती है, मैं जेल में भी जाऊं तो जन्नत में ही हूं। ये गोल बनाए मैं और आप, फिर देखिए सारी बीमारियां दूर। डॉक्टर और हकीम और वो सारे साइकाट्रिस्ट बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे कि इन्होंने कर क्या लिया। अल्लाह ताला मेरे आपके लिए आसान कर दे।